मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 10 जनवरी 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल मुझे कुछ मेल मिले हैं और उस मेल में मैंने महसूस किया है कि दो बातों के प्रति आप सब में से कुछ लोगों ने जिज्ञासाएं व्यक्त की हैं। पहला तो यह कि कल मैंने जिस साधन की बात कही थी, इनफैक्ट वह साधन क्या है। कल आपको ध्यान होगा कि कल मैंने जिस विषय पर बात की थी वो यही था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके लिए जो किया जाना चाहिए वह हम करें। और उस संदर्भ में मैंने दो तत्वों के बारे में बात की थी। एक तो यह है कि किसी भी काम को करने के लिए जो साधन जरूरी हैं वो हमारे पास होने चाहिए, अगर नहीं है तो हमें जुटाने होंगे। और दूसरा, फिर साधन के आ जाने के बाद बहुत जरूरत है कि फिर हम उस पर काम करें, एक्शन में आएं। इसी संदर्भ में कुछ स्टूडेंट्स ने जानना चाहा कि ये जो साधन होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़ा सा इसे और स्पष्ट किया जाए। और इसी के साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मेल मुझे मिले जिसमें उन्होंने कहा कि सर, जब साधन ही सब कुछ है और एक्शन ही सब कुछ है तो फिर भाग्य का क्या रोल है, क्या भाग्य कोई चीज नहीं होती है। इसके बारे में भी उनकी जिज्ञासा थी और स्वाभाविक है कि मैं समझ सकता हूं कि इसके बारे में लोगों की जिज्ञासा होती ही है, क्योंकि भारत वैसे भी ज्यादातर शुरू से भाग्यवादी रहा है, भाग्य पर हमारा बहुत ज्यादा भरोसा है, विश्वास है। तो सामान्य तौर पर भले ही हम उसे रिजेक्ट भी करते हों, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं न कहीं उसकी छोटी, बहुत छोटी सी जड़ मौजूद रहती ही है, चाहे वो थोड़ी सी हो या बहुत हो। तो मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं इन्हीं दो जिज्ञासाओं को शांत करने की यथासंभव कोशिश करूंगा। देखिए, आपको अक्सर दो शब्द सुनने को मिलेंगे, बातचीत में तो शायद चलिए न भी मिले लेकिन पढ़ने को खूब मिलेंगे, और वह है एक साध्य और दूसरा साधन। साध्य का मतलब है उद्देश्य। हम सब किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं, उसे हम कहते हैं साध्य। और फिर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ साधनों की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं मीन्स। अक्सर खासकर जब फिलॉसफी की किताबें आप पढ़ते हैं तो आपको एक डिवीजन दिखाई देता है, उसमें एक विभाजन दिखाई देता है, सर 1800 से पहले और 1800 के बाद। आप देखेंगे कि 1800 से पहले का जो ज्यादातर दर्शन शास्त्र, राजनीतिक दर्शन रहा स्पेशली, उसमें यह है कि नहीं, राज्य ही सब कुछ है और उस राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी किया जाना चाहिए और वहां व्यक्ति एक साधन बन जाता है। मतलब राज्य की सुरक्षा के लिए व्यक्ति का इस्तेमाल साधन की तरह किया जा सकता है, राज्य के विकास के लिए भी व्यक्ति का इस्तेमाल साधन की तरह किया जा सकता है, किया ही जाना चाहिए। यानी कि जो सर्वोपरि है वो राज्य है और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो साधन हैं। लेकिन 1800 के बाद, खासकर फ्रांस की क्रांति ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, यह माना जाने लगा कि नहीं, राज्य सर्वोपरि नहीं है, जो सर्वोपरि है वो व्यक्ति है, राज्य भी व्यक्ति के लिए ही बना है, व्यक्ति के हित के बारे में सोचा जाना चाहिए, दूसरी चीजों के बारे में नहीं। यानी कि व्यक्ति सर्वोपरि हो गया, उलट गया, अब व्यक्ति साध्य हो गया और दूसरी चीजें साधन हो गई, मतलब राज्य भी एक साधन हो गया। तो मित्रों, मेरी समझ से साध्य और साधन के बारे में इतनी स्पष्टता के बाद शायद आप सबके दिमाग में साधन की स्थिति थोड़ी सी और क्लियर हुई हो। अब मैं थोड़ी सी आपको उदाहरण देता हूं। चलिए, एक मुझे बहुत अच्छा उदाहरण अभी याद आ रहा है। मैं श्रेया घोषाल, जो अभी फिल्म गायिका है, उनका एक इंटरव्यू कहीं सुन रहा था, चैनल पर ही किसी पर आ रहा था, तो श्रेया घोषाल ने बताया, ये कोटा, राजस्थान में जो कोटा है, जो आजकल इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोचिंग के रूप में बहुत प्रसिद्ध जगह है, शायद वहां शुरू में रह रही थी, उनके फादर भी वहीं रह रहे थे, मतलब पेरेंट्स के साथ ही रह रही थी। फिर किसी ने इनमें वो टैलेंट देखा, प्रतियोगिताओं वगैरह में शामिल हुई, तो उनके पेरेंट्स को लगा कि श्रेया घोषाल सिंगिंग में बहुत बड़ा काम कर सकती है, नाम कमा सकती है। देखिए, अब श्रेया घोषाल हमारे सामने है, वो बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है, सेलिब्रिटी बन चुकी है, अब तो कुछ भी कह देना उनके लिए आसान है। लेकिन सोच करके देखिए कि वह भी इनिशियल स्टेज पर बिल्कुल आप और हम सब जैसी ही रही होंगी, कुछ नहीं पता था क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं मालूम था। हम तो एक डेस्टिनेशन बना लेते हैं और उस डेस्टिनेशन की तरफ मुंह करके यात्रा शुरू कर देते हैं, बस डेढ़ साल पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, आधे में रह जाते हैं, उससे भी आगे निकल जाते हैं। वी डोंट नो बडी नोज, कोई भी नहीं जानता है। उसमें जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि जब उनके पेरेंट्स को लगा कि श्रेया घोषाल गायिका बन सकती है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मुंबई में रहा जाए, तो उनके जो फादर थे, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है कि वो किस नौकरी में थे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो अपनी बेटी को लेकर के और मुंबई चले गए और वहां जाकर के अब उसकी उनकी जो ट्रेनिंग है, जो कुछ भी है, वो सब चीजें होने लगी। आगे की बात इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप यहां देखिए कि साधन के रूप में क्या हुआ। एक प्रमुख साधन हुआ स्थान, कि अगर आपको अपने उस टैलेंट को आगे बढ़ाना है तो फिर वो कोटा में रह के संभव नहीं है या और छोटी जगह पर रहे, दूसरी जगहों पर संभव नहीं है। उसके लिए जो आदर्शतम, मतलब दूसरी जगह भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट प्लेस हो सकता है, वो बेस्ट प्लेस कौन सा है? बॉम्बे। वो बॉम्बे पहुंच गए, लेकिन अब बॉम्बे पहुंच करके ही बात नहीं होगी। आपने स्थान बदल लिया, अपने लिए दूसरी सुविधाएं जुटा ली, क्योंकि अब जब आप बॉम्बे पहुंचते हैं तो फिर आपको चीजें मिलने लगती हैं। किससे आपको सिंगिंग सीखनी है वो वहां आपको मिलेगा, किस तरीके की सिंगिंग सीखनी चाहिए, किस में ज्यादा कैरियर है वो आपको मिलेगा, फिल्म इंडस्ट्री के में जो काम करने वाले जो कंपोजर्स हैं और दूसरे जो गाने वाले हैं उनसे आपका संपर्क होगा, आप उनके नजर में आएंगे कि अच्छा श्रेया घोषाल भी है जो गाती हैं, अच्छा इनकी ऐसी आवाज है। अभी पिछले सप्ताह ही देखिए, मैं डीडी चैनल पर इनका कैलाश खेर जी का इंटरव्यू सुन रहा था, एक प्रोग्राम आता है। कैलाश खेर ने बताया कि 1.5-2 साल तक तो वो बॉम्बे में ऐसे ही भटकते रहे, चलते रहे, ये भी दिल्ली से बॉम्बे चले गए थे, फिर एक जिंगल्स जो होते हैं एडवर्टीजमेंट के वो उन्होंने गाने शुरू किए, एक ने फिर बुलाया, उसमें बहुत हताश भी हो गए कि उनके गाने की कोई सराहना नहीं हो रही है, लेकिन बाद में उनकी आवाज की क्वालिटी ऐसी थी कि वो अचानक उछल पड़े, वाह अच्छा ये आवाज है, और वहां से उनकी लाइफ बदल गई। तो मतलब हम ऐसे लोगों की निगाह में रहें जो हमारी प्रतिभा को पहचान सकें। अगर हीरा जंगल में पड़ा हुआ है तो उसको कौन देखेगा? चरवाहे जो जंगल में जाते हैं या लकड़ी काटने वाले जाते हैं या जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, वो तो नहीं पहचान पाएंगे ना, जौहरी ही पहचान पाएगा। तो यानी कि आप एक ऐसे वातावरण में यदि रहते हैं जो आपके लिए मुफीद है, आपके अनुकूल है, तभी जाकर के आपकी अपनी जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और रास्ता भी आसान हो जाएगा। आदर्श की बात कहना देखिए बहुत अलग अलग है ना, कि कहीं भी रहो सूरज की रोशनी को कोई नहीं छिपा सकता है, बादल कितने भी छा जाएं कुछ समय के बाद छटेंगे ही और सूरज फिर दमकेगा ही चमकेगा ही, वो ठीक है, वो आदर्श की बात है और वो भी अपनी जगह रोल प्ले करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि वही सब कुछ है, हमें अपनी ओर से भी करना पड़ता है। तो मित्रों, जैसे अब मैंने श्रेया घोषाल की बात की, अब वो मुंबई पहुंच गया, मुंबई पहुंचने के बाद अब आप देखिए कि ढेर सारे साधन, अब एक बहुत लंबी लिस्ट होगी, उनको अवेलेबल हो गए, उन पर उन्होंने काम करना शुरू किया, ये पहली बात। दूसरी बात देखिए कि जब हमें, एक तो पहली बात यह है, फिर से मैं इसमें ऐड कर दूं कि जो साधन होने चाहिए वो संपूर्णता में होने चाहिए, यानी कि जितने साधनों की जरूरत है वो सब आपके पास हों, ये नहीं कि यार चलो 10 हैं एक नहीं है तो भी बात बन जाएगी, नहीं, वो हो सकता है कि वो जो नहीं है एक, वो जो 10 हैं उस पर भारी पड़ जाए और बात न बने। सारे साधन आपके पास होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। दूसरा कि जब आपके पास मैक्सिमम साधन हो गए, सारे साधन हो गए, तो अब आपको उस पर एक्शन करना है, उसे काम में लाना है, उपयोग में लाना है, है ना। दीवाल पर टंगी हुई तलवार का कोई अर्थ नहीं होता है ना, उसका इस्तेमाल करना होगा, चाकू का इस्तेमाल करना होगा। अब जब हम इस्तेमाल करते हैं तब भी उनका इस्तेमाल संपूर्णता के साथ होना चाहिए, आधे अधूरेपन के साथ नहीं। अगर हम आधे अधूरा इस्तेमाल करेंगे तो बट नेचुरली के परिणाम भी आधे अधूरे मिलेंगे। हां, हम जब मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे, जितना भी हम इस्तेमाल करेंगे, आप यूं कह लीजिए, परिणाम उतने अच्छे मिलते चले जाएंगे। अब जो भाग्य का रोल है वो यहीं पर आता है। देखिए, एक तो यह है कि हमने इस्तेमाल कितना के साधन कितने जुटाए, अगर उसमें थोड़ा बहुत नहीं जुट पाया है वो कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल सका तो हम कह सकते हैं यार भाग्य देखो कितना अच्छा था, और अगर उसने निगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया तो हम कहेंगे कि भाग्य कितना खराब था। ये तो साधनों की बात हो गई। फिर इस्तेमाल के स्तर पर भी यही बात होती है कि हम पूरा इस्तेमाल कर लिए सफल नहीं हुए तो भाग्य खराब था, पूरा इस्तेमाल तो नहीं किया लेकिन सफल हो गए तो भाग्य अच्छा था। तो ये इनफैक्ट एक कंपैरेटिव मामला होता है, सापेक्ष का मामला होता है। दूसरे उस समय क्या कर रहे हैं, कौन सा समय है, अब दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अभी टाइम क्या है उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। तो जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, देखिए, उसको आप चाहें तो भाग्य के हवाले छोड़ सकते क्योंकि अब उस पर आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं, तो उसको होने दीजिए। और जिस पर आपका कंट्रोल है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण रख करके मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिए, सफलता मिल जाएगी और फिर वह हो जाएगा जो आप करना चाह रहे हैं, वह मिल जाएगा जो आप पाना चाह रहे हैं, आप वह बन जाएंगे जो आप बनना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।